الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماتكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مبارک مجلس میں شریک ہیں اور یہ نکاح ایسا ہے کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کا اس سے پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے، جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کا بھی اس سے پہلے نکاح ہو چکا ہے، لیکن اس وقت دونوں بے نکاح ہیں، تو ان دو کے درمیان میں نکاح منعقد کرنے کے لیے یہ مجلس اس وقت مقرر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، نکاح کی اس بابرکت مجلس کو، ہر طرح خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. نکاح ایک ایسی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت مطہرہ نے زندگی بھر کی ضرورت قرار دی. اس کی ضرورت جوانی میں بھی ہے، اس کی ضرورت اڈھیر عمر میں بھی ہے، اور اس کی ضرورت بڑھاپے میں بھی ہے. زندگی کا کوئی وقت، کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں نکاح کی ضرورت نہ ہو، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر انسان کے لیے دو وقت کا کھانا پینا اور ضروریات زندگی ہے. جب تک سانس کی آمد و رفت ہے یہ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح نکاح کی بھی ایک ایسی ضرورت ہے جو جب تک سانس کا آنا جانا ہے اس وقت تک لگا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی مجبوری ہوتی ہے، آدمی پر بڑھاپا آتا ہے یا بیوی چلی جاتی ہے، یا بڑھاپا آتا ہے مرد چلا جاتا ہے اور بیوی رہ جاتی ہے، اور پھر زندگی کے جو ایام باقی ہیں وہ بعض مرتبہ اکیلے گزار لیتے ہیں. لیکن یہ وقتی بات ہے، اصل یہ ہے کہ نکاح جب تک ہے زندگی بھر کے لیے. اور عرب کا ملک جہاں اسلام شروع ہوا بہت ہی سادہ اور سمپل، اور وہاں اس طریقے پر ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح معیوب نہیں سمجھا جاتا. ایک نکاح ہوا، شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے سے نکاح ہو گیا، عدت گزرنے کے بعد وہ شہید ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، تیسرے سے نکاح کر لیا. بعض مرتبہ بعض عورتیں کئی کئی نکاح والی ہوتی ہیں. عورتوں کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے میں بھی عار نہیں ہوتا تھا، اور مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے میں کوئی عار نہیں ہوتا تھا. تو ایک ضرورت کی چیز ہے. جب سے ہم عجمی دور میں ہیں، یعنی غیر عربی غیر اسلامی دور میں، تو بس عجیب و غریب کیفیت بن گئی. ہو گیا جو ہو گیا، ایک نکاح، اس کے بعد دوسرا نکاح بہرحال معیوب سمجھا جاتا ہے. یعنی ہو گیا، اب کیا ضرورت پڑی؟ دو چار بال سفید ہو گئے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے کہ ابھی نہیں ہوں، انہیں ہوں ضرورت پڑی نکاح کروانی، تو فوراً تانا دینا شروع کرتے ہیں. کسی عورت کا نکاح ہو گیا، ایک آدھ بچی ہو گئی، بچہ ہو گیا، تو اگر وہ نکاح کا ارادہ کر لے تو اس پر تانے شروع ہو جاتے ہیں. भाई इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसके तो बच्चे हैं, इसके तो ये है वो, ये सब गैर इस्लामी जहन है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने ये सब कयूद रखी ही नहीं। इससे भी बड़ी बात यह है कि देखो बाद इलाकों में ये है कि लड़का जब तक पैगाम न दे उस वक्त तक लड़की घर में बैठी है। लड़की के माँ बाप किसी से नहीं कह सकते हैं कि भाई मेरे घर में बेटी है तुम निकाह करो या तुम अपने बेटे का निकाह करो, मायूब समझते हैं। लड़की वाले पैगाम देना मायूब समझते हैं। बाद इलाकों में ऐसा है कि लड़का पैगाम देना मायूब समझता है, वहाँ लड़की वाले ही पैगाम देते हैं। लड़का पैगाम देता है उसको ऐप समझते हैं। गुजरात में क्या होता है आप जानते हैं, लड़का पैगाम देता है लड़के वाले पैगाम देते हैं लड़की को, ठीक है ना। यूपी में चले जाओ वहाँ पर यह है कि अगर कोई लड़का किसी को पैगाम दे तो उसको इंतहाई बेशर्म बेहया तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और लड़की के वालिद ही कहीं जाकर किसी से बात कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ लड़का है तुम उसे निकाह करो। अजीब रस्म है, जहाँ इसके खिलाफ होता है उसको बुरा समझा जाता है। तो शरीयत मुतहरा में ये सब कैद नहीं है। कुरान कहता है वान के हुल अयामा मिनकु, अयामा जमा है अय्यम की, और वस्सालिहीन, सालिहीन जमा है सालिह की। अय्यम के माना है वो शख्स जिसका निकाह न हुआ हो बस, या जिसके पास किस वक्त निकाह में कोई ना हो। अगर लड़का है तो बीवी ना हो, अगर लड़की है तो शोहर ना हो, तो बस वो कहलाते हैं अय्यम। कुरान कहता है अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, तुम बे शादी शुदा लड़कों और लड़कियों को या मर्दों और औरतों का निकाह आपस में करो। और फरमाया कि अगर कभी ये ख्याल पेश आए कि ये तो बहुत गरीब है इनके पास है ही किया, तो अल्लाह ने आगे उसका इलाज बताया, अगर ये गरीब होंगे तो अल्लाह ताला निकाह की बरकत से उनको बेनियाज कर देंगे, साहिब माल बना देंगे। तो फकीर होना भी ऐब नहीं, फकीर होना भी उज्र नहीं निकाह करने में। मशहूर वाकया है बुखारी शरीफ में बार बार है, एक औरत खिदमत मुबारक में हाजिर हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और सहाबा की एक जमात भी मुख्तसर से बैठी हुई थी। उस औरत ने आकर कहा इन्नी वहबतु नफ्सी लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं अपनी ज़ात आपको हिबा करती हूँ। और ये उस वक्त दुरुस्त भी था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी आपके मर्तबे की बुनियाद पर कि अगर कोई औरत अपनी ज़ात हिबा करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला महर दिए हुए उस निकाह को मंजूर कर सकते थे। उस औरत ने पेश किया, हुजूर मौजूद हैं, सहाबा की एक छोटी सी मुख्तसर जमात मौजूद है, लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस निकाह करने का इरादा नहीं था। तो आप कुछ देर सोचते रहे, इतनी देर सोचा कि उस औरत को ये अंदाज हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे निकाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाल वो मुंतज़िर रही हुजूर के जवाब का। जो सहाबा बैठे हुए थे उन्होंने भी महसूस कर लिया कि आपका इरादा नहीं है जो बात औरत कह रही। एक शख्स जो ज़रूरतमंद थे वो खड़े हुए और उन्होंने अर्ज किया या रसूल जब भी नहीं हाँ इल्लम तकुन लकफिया हाजा, या रसूल अल्लाह अगर आपको इनसे निकाह की ज़रूरत ना हो तो मुझसे निकाह करा दीजिए। आई थी औरत हुजूर को पेश करने के लिए अपनी ज़ात, और जब देखा कि नहीं है तो एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया गया या रसूलल्लाह मुझसे निकाह करा दीजिए। तो आपने पूछा अच्छा भाई तुम्हारे पास कुछ देने को है, भाई कुछ तो नहीं मेरे पास देने के लिए। अरे कुछ तो होना चाहिए, जब तुम निकाह करना चाहते हो तो कुछ तो पास में होना चाहिए, जाओ घर जाओ देख कर आओ, कोई भी चीज़ हो तो लाकर बताओ। तो उन्होंने घर जाकर आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह घर में तो कुछ नहीं है, बच्चों ने इजार पहने हुए हैं, यही मेरी इजार है। इजार के मारे लुंगी तहबन, यानी ऊपर चादर भी नहीं थी, ऊपर चादर भी नहीं। और घर जाकर ढूंढ कर आए, कोई एक चीज ऐसी नहीं मिली जो महर में पेश कर दे। खाने की बात नहीं हो रही है, महर में पेश कर सके। तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई एक इजार अगर तुम्हारे पास है, तुम उसको आधी दोगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा? तुम क्या पहनोगे? लेकिन फिर अल्लाह के रसूल चाहते थे कोई औरत या कोई मर्द जिसको निकाह की ज़रूरत हो, वो बेनिकाह ना रहे। अब किस तरह निकाह कराएं? फरमाया कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुछ कुरान करीम की सूरतें याद हैं? तो मैं हाँ, मुझे फुला फुला सूरतें याद हैं। तो मैं अच्छा ये तमाम सूरतें बीवी को याद कराना और मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा देता हूँ। निकाह पढ़ा दे, कहाँ से खिला रहे हो? खिलाएंगे। जब तक आदमी फारी अकेला होता है तो कोई फिक्र नहीं होती, जो चाहे खा पी ले। जब बीवी आएगी तो खुद ही फिक्र पड़ेगी, जाएगा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए, और लकड़ियाँ काट कर ला कर बेचेगा, और अपनों को भी खुद भी खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा। बस औकात ऐसा होता है, एक आदमी अकेला होता है तो लापरवाह होता है, बेफिक्र होता है। जब घर में बीवी आ जाती है, फिक्र आती है भाई कहीं काम ढूंढना पड़ेगा, जॉब ढूंढ कर फिर वो काम शुरू तो सारा हो जाता है। तो शरीयत का मिजाज ये है, किसी भी उम्र में निकाह के बगैर आदमी ना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिनका निकाह है हमारे हाफिज अबू बकर साहब का, इनको मैं बहुत काफ़ी ज़माने से जानता हूँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह सालेह शख्स हैं इंशाअल्लाह। और इस वक्त इनके निकाह में कोई नहीं थी तो इन्होंने इरादा किया, और माशाल्लाह जिस खातून से निकाह होगा वो भी मेरी मुतआरफ़ हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनके वालिदैन को भी जानता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस निकाह में खैर व बरकत होगी। और मैं दुआ भी करता हूँ कि जो इस्लामी और शरई और सादा तरीक़े पर ये निकाह हो रहा है, अल्लाह ताला इसको हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत का और कवी ताल्लुक का ज़रिया बनाए, और ज़िंदगी भर अल्लाह ताला इनको निभाने की तौफीक अता करे। अब मुख्तसर सी बात हम करते हैं, बात तो शुरू की थी हमारे शौकत लियाकत भाई की आमद के इंतज़ार में, माशाल्लाह आ चुके हैं। अब निकाह पढ़ देता हूँ। निभा किस तरह होता है? निभा के माने दोनों मिलकर किस तरह रहें, इसके लिए एक ही चीज़ है, वो क्या है कि आदमी थोड़ा बहुत दूसरे के मिजाज को पहले समझे, और समझने के बाद उसकी भी रियायत करे, अपनी भी रियायत करे। जब मियां बीवी दोनों एक दूसरे की रियायत करके चलते हैं, ज़िंदगी निभ जाती है। ऐसा तो होता नहीं कि 100% आदमी पूरा का पूरा सामने वाला उसके मुआफ़िक हो। कुछ चीज़ों में मुआफ़त होती है, बाद चीज़ों में ज़रा मुआफ़त नहीं होती। तो मुआफ़त पैदा करने के लिए समझ की ज़रूरत है, एक दूसरे की बात समझें, फौरी तौर पर जवाब न दें, और जितना मुमकिन हो उसको इंगेज करने की और लेने की कोशिश करें। और दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझेंगे तो इंशाअल्लाह फिर क़यामत तक का ये रिश्ता बाकी है, और अल्लाह ताला ये हमेशा हमेशा हो। और करोड़ों निकाह ऐसे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि निकाह हुई और फिर सारी ज़िंदगी गुजर गई। कभी कभार बात उलट जाती है, अल्लाह ताला हमारे मुसलमान लोगों को, नौजवानों को तौफीक अता फरमाए कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे का मिजाज पहचानें, मिलजुल कर मोहब्बत के साथ प्यार के साथ रहने की और ज़िंदगी गुजारने की तो कोशिश करें। अल्लाह ताला इसकी हम सब को तौफीक अता फरमाए। सुब्हानअल्लाह वबिहम्दिही, सुब्हानअल्लाह वबिहम्दिही। लियाकत भाई आपकी बेटी है माशाल्लाह, और फजीला उन्होंने आपको वकील बना दिया है निकाह करने का, और हमारे दूसरे मोहम्मद भाई आप हैं, हाँ हाफिज़ साहब आप हैं, और फैज भाई आप हैं, तो आप दोनों गवाह हैं, उन्होंने जायज़ दे दी आपको निकाह पढ़ देता हूँ। निकाह के वो महज 832 पाउंड الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حافظ ابو بکر صادق صاحب لیاقت بھائی پوپٹ نے اپنی بیٹی فضیلہ بیٹی کو بھائی وز 832 pounds 30 pence کیش مہر کے عوض میں اور ہمارے محمد بھائی اور فیض بھائی دونوں گواہ ہیں اور تمام حاضرین کے روح پر وہ اپنے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بقولك عمن سواك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبين عائشة وحفصة وجميع أزواجه المطهرات. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بين قلوب جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم.